च अर्थवाद प्रकरणम प्रसंग विभाग संख्या 12 में वेद के 5 प्रभेद 1 विधि 2 मंत्र 3 नामधेय 4 निषेध एवं 5 अर्थवाद बतलाए गए हैं। इनमें से पूर्व 4 प्रभेदों पर अभी तक विचार किया जा चुका है। अब अंतिम प्रभेद अर्थवाद का विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है। अर्थवाद लक्षणम प्राशस्त्य निंदान्यत रपरम वाक्यम अर्थवाद तस्य च लक्षणया प्रयोजन वदर्थ पर्यवसानम तथा ही अर्थवाद वाक्यम ही स्वार्थ प्रतिपादने प्रयोजना भावाद विधेय निषेधियोह प्राशस्त्य निंदितत्वे लक्षणया प्रतिपादयति स्वार्थ मात्र परत्वे अनर्थक्य प्रसंगात् आमनायस्य हि क्रियार्थत्वात् न चेष्टापत्तिः स्वाध्यायो अध्येतव्यः इत्यध्ययन विधिना सकल वेदाध्ययनं कर्तव्यमिति बोधयता सर्ववेदस्य प्रयोजन वदर्थ पर्यवसायित्वं सूचयतो पात्तत्वेनार्थ क्यानुपपत्तेः अर्थ प्रशंसा परक अथवा निंदा परक वाक्य को अर्थवाद कहते हैं। अर्थवाद को लक्षणा द्वारा धर्म परक माना जाता है। धर्म प्रयोजनवान पदार्थ होता है। अभिप्राय यह है कि अर्थवाद वाक्य का अपने मुख्यार्थ में कोई प्रयोजन नहीं रहता, अतएव अर्थवाद वाक्य लक्षणा द्वारा विधेय पदार्थ की प्रशंसा एवं निषिद्ध पदार्थ की निंदा का प्रतिपादन करता है। यदि अर्थवाद वाक्य का अभिप्राय उसके अपने मुख्यार्थ में ही माना जाएगा तो अर्थवाद वाक्य के व्यर्थ होने का प्रसंग उठ खड़ा होगा, कारण संपूर्ण वेद क्रियापरक होता है। अर्थवाद वाक्य के व्यर्थ होने की आपत्ति को इष्ट नहीं माना जा सकता, कारण स्वाध्यायो अध्येतव्यः यह अध्ययन विधि सूचित करती है। एक, संपूर्ण वेद का अध्ययन करना चाहिए। दो, संपूर्ण वेद का अभिप्राय प्रयोजनवान अर्थ धर्म में ही है। और तीन, अर्थवाद भी वेदगत होने के कारण क्रियापरक रूप में स्वीकृत होता है, अतएव अर्थवाद व्यर्थ नहीं होता है। मीमांसार्थ संग्रह कौमुदी इदानीं सर्वार्थवाद साधारण्येनार्थवाद रूप वेद भागस्य लक्षण माह प्राशस्त्येति ननु आयुर्वैक्षेपिष्ठा देवते त्यादेरर्थवाद वाक्यात् प्राशस्त्यादेर प्रतीयमानत्वान् तस्य प्राशस्त्यादि परत्वं ततश्च संभवा विलक्षणमिदमित्यत आह तस्येति तस्यार्थवादस्य लक्षणया प्राशस्त्य निंदान्यतर प्रतिपादकत्व संभवेन नेदम लक्षणम संभवित्यर्थ अर्थवादस्य फल वदर्थ पर्यवसानमेवोपपादयति तथा हित्यादिना अर्थवाद वाक्यम कर्तुः प्राशस्त्य निंदितत्व प्रतिपादयतीत्यन्वयः नन्वर्थवादस्य स्वार्थ मात्र परत्वे कथमानर्थक्य प्रसंगो वायुर्वैक्षेपिष्ठे त्यादेरर्थवाद वाक्यात् क्षिप्रगामी वायुदेवता रूपार्थस्य प्रतीयमानत्वा दित्यत आह आम्नायस्येति समस्त वेदस्य क्रिया प्रतिपादकत्व स्वीकारेण नास्य सिद्धार्थ प्रतिपादकस्य स्वार्थ मात्र परत्वे सार्थक्यमुप पद्यत इति भावः अर्थवाद वाक्यानामनर्थक त्वशेष्टत्वा माशंकाय परिहरति न चेत्यादिना अर्थबोधिनी। विधि वाक्य जिस पदार्थ का विधान करता है उसे विधेय कहा जाता है और निषेध वाक्य जिस पदार्थ का निषेध करता है उसे निषेध्य कहा जाता है। अर्थवाद वाक्य विधेय पदार्थ की प्रशंसा करता है और निषेध्य पदार्थ की निंदा। अर्थवाद वाक्य का वाच्यार्थ विधेय की प्रशंसा अथवा निषेध की निंदा नहीं होता। यह अर्थ तो लक्षणा द्वारा समझा जाता है। अर्थवाद वाक्य का अपने वाच्यार्थ में प्रयोजन नहीं रहा करता। उदाहरण के लिए वायुर्वैक्षेपिष्ठा देवता, वायु सबसे अधिक शीघ्रगामी देवता है। इस अर्थवाद वाक्य पर विचार किया जा रहा है। इस अर्थवाद का अभिप्राय वायु सबसे अधिक शीघ्रगामी देवता है इस अर्थ में नहीं होता, क्योंकि अर्थवाद वाक्य वेद का एक भाग है। संपूर्ण वेद अर्थात विधि मंत्र नामधेय निषेध एवं अर्थवाद वेद के इन पांचों भागों का तात्पर्य धर्म में रहता है। ये सभी धर्म यागादि क्रिया का प्रतिपादन करते हैं। आम नयस्य क्रियार्थत्वात् स्वाध्यायो अध्येतव्यः। यह अध्ययन विधि भी विधान करती है कि वेद का अध्ययन करना चाहिए, अर्थात वेद का अध्ययन स्वप्रयोजन है। वेद धर्म का प्रतिपादन करता है और धर्मानुष्ठान से इष्ट की प्राप्ति होती है, यही वेद की प्रयोजनवत्ता है। अर्थवाद भी वेद के ही अंतर्गत है। इस प्रकार अर्थवाद को भी धर्म यागादि क्रिया का प्रतिपादक होना चाहिए। अतएव अर्थवाद वाक्य अभिधा द्वारा न तो स्वार्थ परक होता है और न ही क्रिया परक, किंतु वहाँ लक्षणा द्वारा यह समझा जाता है कि अर्थवाद वाक्य विधि विहित पदार्थ की प्रशंसा एवं निषेध वाक्य द्वारा निषिद्ध पदार्थ की निंदा करते हैं। विहित एवं निषिद्ध क्रियाएं होती हैं अथवा क्रियाओं के अंगभूत अन्य पदार्थ। इस प्रकार अर्थवाद वाक्य परम्परा क्रिया परक ही होते हैं, अर्थात धर्म परक ही होते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि अर्थवाद वाक्य विधि विहित एवं निषेध निषिद्ध पदार्थों की क्रमशः प्रशंसा एवं निंदा करते हैं, ताकि श्रोता व्यक्ति विहित के संपादन से इष्ट की प्राप्ति कर सके एवं निषिद्ध से निवृत्त होकर अनिष्ट से बच सके। यही कारण है कि अर्थवाद वाक्य के निरर्थक नहीं माना जा सकता और इस प्रकार उसकी निरर्थकता की आपत्ति को इष्ट भी नहीं मान सकते। प्रसंग अब ग्रंथकार अर्थवाद के प्रभेदों पर प्रकाश डाल रहे हैं। अर्थवादस्य द्वैविध्यम् स द्विविध विधिशेषो निषेधश्चेति तत्र वायव्यम् श्वेतमालभेद भूतिकामः इत्यादि विधिशेषस्य वायुर्व्यक्षेपिष्ठा देवता इत्यादेर विधेयार्थ प्राशस्य बोधक कत्यार्थवत्वम् बर्हिषी रजतम् न देयम् इत्यादि निषेधशेषस्य सोरोदित यद अरोदित तदरुद्रस्य रुद्रत्वम् इत्यादि निषेध्यस्य निन्दितत्वबोधकतयार्थवत्वम् न च प्राशस्त्यादिबोधस्य निष्प्रयोजनत्वेनार्थवादस्यार्थवत्वमिति वाच्यम् आलस्यादिवशाद् प्रवर्तमानस्य पुंसः प्रवृत्त्यादिजनकत्वेन तद्बोधस्योपयोगात्। अर्थ अर्थवाद के दो प्रभेद हैं, एक विधिशेष एवं दो निषेधशेष। वायव्यम श्वेतमालभेत भूतिकामः यह एक विधि वाक्य है। इसका वाचार्थ है ऐश्वर्य प्राप्ति का इच्छुक व्यक्ति वायु देवता के लिए सफेद पशु का आलभन करे। इस विधि का शेष अर्थात अर्थवाद वाक्य है वायुर्वेक्षेपिष्ठा देवता। इस अर्थवाद वाक्य का वाचार्थ है वायु सबसे अधिक शीघ्रगामी देवता है। प्रकृति अर्थवाद वाक्य की सार्थकता यह है कि वह उक्त विधि के द्वारा विहित क्रिया की प्रशंसा करता है। इसी प्रकार बर्हिषि रजतम् न देयम् कोष्ठक याग में चांदी की दक्षिणा नहीं देनी चाहिए, कोष्ठक बंद। इस निषेध वाक्य का शेष अर्थात अर्थवाद वाक्य है सो अरोदित यदरोदित द्रुद्रस्य रुद्रत्वम् कोष्ठक वह रोया और जो वह रोया वही तो रुद्र की रुद्रता है, अर्थात इसलिए तो रुद्र को रुद्र रोने वाला कहा जाता है, कोष्ठक बंद। इस निषेध शेष अर्थवाद की यही सार्थकता है कि यह उक्त निषेध वाक्य द्वारा निषिद्ध पदार्थ की निंदा का ज्ञान कराता है। यह कहना भी उचित नहीं है कि प्रशंसा आदि का ज्ञान व्यर्थ होता है, इसलिए अर्थवाद का कुछ भी प्रयोजन नहीं होता। कारण आलस्य आदि के प्रभाव से जो व्यक्ति यागादि में प्रवृत्त नहीं होता उसमें यागादि के प्रति प्रवृत्ति की उत्पत्ति विधेयार्थ की प्रशंसा के ज्ञान से होती है, इसलिए अर्थवाद प्रयोजनहीन नहीं होते हैं। निषेध पदार्थ की निंदा के ज्ञान से व्यक्ति में अनर्थ मूलक क्रिया के प्रति निवृत्ति की उत्पत्ति होती है, इसलिए भी अर्थवाद प्रयोजनहीन नहीं होते हैं। मीमांसार्थ संग्रह कौमुदी अर्थवाद विभजते स द्विविध इति विधिशेष इत्यादि सो अपि चतुर्विध प्रशंसा निंदा प्रकृति पुराकल्प भेदात् तत् प्रशंसार्थवादो हि शोभते अस्य मुखम य एवं वेद इत्यादि वायुर्वेक्षेपिष्ठे इत्यादिर्मूलो दाहृतश्च निन्दार्थवादस्तु असंत्रम् वा एतदच्छद् छन्दोमम् अयुजम् हि रजतम् यो बर्हिषि ददाति इत्यादि सो अरोदि इत्यादिर्मूलो दाहृतश्च भवति परेडेदम् महता पुरुषेण कर्मकृतिमिति प्रतिपादको अर्थवादः परकृतिरित्युच्यते यथा अग्निर्वा अकामयते इत्यादि परवक्तुकार्थादि प्रतिपादको अर्थवादः पुराकल्प इत्युच्यते, यथा तमशय धिया धियात्वावध्यासुरित्यादिरिति। विधेयार्थ प्रास्वस्त्येति वायुः क्षिप्रगामित्वादतीव प्रशस्ता देवता भवत्यतस्तद्देवत्यं कर्म प्रशस्तमिति विधेय कर्म देवतागत प्राशस्य प्रतिपादन द्वारा विधेयक वाक्यत्वे नार्थवत्वमित्यर्थ। निषेध्येति निषेध्य रजत निंदा प्रतिपादन द्वारा रजत निषेध प्राशस्य परत्वेन निषेधैक वाक्यत्वादर्थवत्वमित्यर्थ। एवं अग्निर्वा अकामयते त्यादेरप्य अग्निदेवत्यो यागः पूर्वकाले अग्निना कृतत्वात् प्रशस्तो अधिक्यादिदानीन्त नैरप्य यजमानैरवश्यं कर्तव्यमिति विधेय कर्म गत प्राशस्त्य प्रतिपादन द्वारा विधेयक वाक्यत्वेनार्थवत्वं बोध्यम् एव मन्यत्रापि तत्तद् विधेय कर्म प्राशस्त्यादि प्रतिपादन द्वारेण तद् विध्याद्येक वाक्यत्वेनार्थवत्वं विभावनीयं क्वचिदर्थवादस्य संदिग्धा अर्थनिर्णायकत्वेन प्रामाण्यं स्वीकृतं, यथा अक्ताः शर्करा उपदध्यादिति विधा उक्ता इति पदेन द्रवद्रव्य सामान्यं प्रतीयते, तच्च द्रव्यं किमिति संदेहे तजो वैघृत मित्यर्थवादरूपाद्वाक्य वाक्यशेषाद्धत्मिति निश्चियत इति। ननु विधेय कर्म प्रासस्त्यादिबोधस्य सुखदुःखा भावान्यतर विलक्षणत्वेन नार्थवादस्य तत्प्रतिपादनेनार्थवत्व मुपपद्यत इत्याशंकय परिहरति न चेत्यादिना तद्बोधस्योपयोगादिति अर्थवादजन्य प्रासस्त्यादिबोधस्य विधेय कर्मानुष्ठाना दा उपयोगादर्थवादस्यार्थवत्त्वमुपपद्यत इत्यर्थः। अर्थबोधिनी प्रकृतिस्थल में ग्रंथकार ने विशेष दृष्टिकोण से अर्थवाद के दो प्रभेद एक विधि शेष एवं दो निषेध शेष बतलाया है। अगले विभाग में अर्थवाद के अन्य दृष्टिकोण से तीन प्रभेद बतलाए जाएंगे। अर्थवाद के प्रथम प्रभेद का नाम विधि शेष है। इसे विधि शेष इसलिए कहा जाता है कि यह विधेय ये प्रशंसा द्वारा विधि वाक्य का पूरक होता है। विधि एवं अर्थवाद में एक वाक्यता होती है, अर्थात दोनों मिलकर एक पूर्ण वाक्य होते हैं। विधि के द्वारा विधेय का विधान होता है, अतएव विधि मुख्य होती है। इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि अर्थवाद वाक्य विधि रूप मुख्य वाक्य का एक अवशिष्ट भाग ही है, इसलिए अर्थवाद को विधि का अवशिष्ट भाग अर्थात विधि शेष कहते हैं। इसी प्रकार निषेध वाक्य की पूर्णता के लिए भी अर्थवाद की अपेक्षा होती है, इसलिए निषेध वाक्य द्वारा निषिद्ध पदार्थ की निंदा करने वाले अर्थवाद को निषेध शेष कहते हैं। विधि शेष अर्थवाद का एक उदाहरण है। वायुर्वैच्छे पिष्ठा देवता अर्थात वायु सर्वाधिक शीघ्रकामी देवता है। इस अर्थवाद को वायव्यम श्वेत मालभेत भूतिकामः इस विधि का शेष वाक्य माना जाता है। वायव्यम श्वेत मालभेत भूतिकामः इस वाक्य का वाच्यार्थ यह है कि ऐश्वर्य को चाहने वाला व्यक्ति वायु देवता के लिए श्वेत पशु का आलभन करे, अर्थात इस विधि के द्वारा वायु देवता के लिए श्वेत पशु के आलभन का विधान किया जाता है। हो सकता है कि विधि को सुनने वाला व्यक्ति प्रमादवश उक्त विधेय के अनुष्ठान में प्रवृत्त न हो, अतएव विधेय में प्रवृत्त कराने के लिए वायुर्वैच्छे पिष्ठा देवता इस अर्थवाद वाक्य द्वारा विधेय की प्रशंसा की जाती है। वायु देवता क्षेपिष्ठा शीघ्रगामी है, अतएव वह विधेय के अनुष्ठाता व्यक्ति को भूमि भी शीघ्र प्रदान करता है। इस प्रकार विधि शेष अर्थवाद से विधेय की प्रशंसा की जाती है। विधेय की प्रशंसा द्वारा व्यक्ति को विधेय अनुष्ठान में प्रवृत्त कराना विधि शेष का प्रयोजन है। इस प्रकार विधि शेष अर्थवाद का प्रयोजन विधेय की प्रशंसा के ज्ञान के द्वारा विधेय क्रिया में अधिकारी व्यक्ति को प्रवृत्त कराना है। विधेय की प्रशंसा को सुनकर आलस्य युक्त व्यक्ति भी विधेय भूत याग आदि के अनुष्ठान में प्रवृत्त हो जाता है, अतएव विधेय के प्रासस्य का ज्ञान एवं ज्ञापन व्यर्थ नहीं होता। निषेध शेष संज्ञक अर्थवाद का प्रयोजन निषेध वाक्य द्वारा निषेध पदार्थ को निंदा का बोध कराना। कोशक निषेध शेषस्य निषेध्यस्य निंदितत्व बोधकतयार्थवत्वम्। कोष्ठक बंद यह निषेध वाक्य का उदाहरण बर्हिषि रजतम न देयम है। इसका अर्थ यह है कि यज्ञ में चांदी की दक्षिणा नहीं देनी चाहिए। निषेध रजत दान की निंदा, इसलिए निषेध शेष अर्थवाद से की जाती है। सो अरोदित यद रोदित ध्रुव दृश्य रुद्रत्वम, इस अर्थवाद के द्वारा यह ज्ञात होता है कि रोने से जो आंसू गिरे वही रजत है। इसलिए यदि रजत दान होगा तो घर में रोने का प्रसंग उठ खड़ा होगा। इस प्रकार इस अर्थवाद से निषेध वाक्य द्वारा निषिद्ध रजत दान की निंदा होने पर निषेध एवं अर्थवाद वाक्यों में एक वाक्यता स्थापित होती है। यही कारण है कि प्रकृति अर्थवाद को विधिशेष कहते हैं। सो अरोदित इत्यादि वाक्य के अर्थ को ठीक तरह से समझने के लिए तत्तिरीय संहिता गत एक कथा का उल्लेख कर देना अप्रासंगिक नहीं होगा। एक बार देवासुर संग्राम छिड़ा। देवताओं ने जब युद्ध के लिए प्रस्थान किया तब अपनी अपनी बहुमूल्य वस्तुओं को अग्नि के पास न्यास रूप में यह सोचकर रख दिया कि यदि कदाचित असुर विजयी हो जाएं, तो इन वस्तुओं से लोक यात्रा का निर्वाह हो सकेगा। किंतु उन बहुमूल्य सुंदर वस्तुओं को देखकर अग्नि को लोभ आ गया और वह उन सभी वस्तुओं को लेकर भाग निकला। असुरों पर विजय प्राप्त करके जब देवता लौट आए तो क्या देखते हैं कि अग्नि सारी वस्तुओं को लिए भागा जा रहा है। देवताओं ने अग्नि का पीछा किया और उससे पकड़कर सारा सामान जबरदस्ती छीन लिया। उस सारी सामग्री के छीन जाने पर अग्नि को बड़ा आघात पहुंचा और वह रो पड़ा। रोते समय अग्नि की आंखों से आंसू की जो बूंदे टपके वही घनीभूत होकर रजत के रूप में परिणत हो गए। निषेध शेष अर्थवाद से निषेध वाक्य द्वारा निषिद्ध मान रजत दान आदि पदार्थ की निंदा का ज्ञान होता है। यह ज्ञान भी उपयोगी है क्योंकि ऐसा बोध होने पर व्यक्ति निषिद्ध मान रजत दान आदि से निवृत्त होकर रजत दान जन्य रोदनादि रूप अनिष्ट प्रसंग से बच जाता है। प्रसंग अब दूसरे दृष्टिकोण से अर्थवाद के अन्य प्रभेद किए जाते हैं। अर्थवादस्य त्रैविध्यम् विरोधे गुणवादः स्यादनुवादो अवा अवधारिते भूतार्थवादस्तद्धानादर्थवादस्त्रिधामतः इति। अस्यार्थ प्रमाणांतर विरोधे सत्यर्थवादो गुणवादः यथा आदित्यो यूपः इत्यादि। यूपा आदित्याभेदस्य प्रत्यक्षवादितत्वादादित्य दुज्ज्वलत्व रूप गुणो अनेन लक्षणया प्रतिपाद्यते प्रमाणांतरा वगतार्थ बोध को अर्थवादो अनुवाद यथा अग्निर्हिमस्य भेषजम् इति। अत्र हिम विरोधित्व स्याग्नौ प्रत्यक्षावगतत्वात् प्रमाणांतर विरोधत प्राप्ति हितार्थ बोध को अर्थवादो भूतार्थवाद यथा इंद्रो वृत्राय वज्रमुदर यच्छत इत्यादि। अर्थ अर्थवाद के तीन प्रभेद होते हैं, एक गुणवाद, दो अनुवाद एवं तीन भूतार्थवाद। इन तीनों का लक्षण निम्नलिखित श्लोक में इस प्रकार पाया जाता है। विरोधे गुणवादस्यानुवादो अवधारिते भूतार्थवादस्तद्धा नादर्थवादस्त्रिधामतः। अर्थात कोष्ठक अर्थवाद तीन प्रकार का होता है, अन्य प्रमाण से विरोध होने पर गुणवाद, अन्य प्रमाण से ज्ञात होने पर अनुवाद एवं प्रमाणांतर विरोध और प्रमाणांतर प्राप्ति, इन दोनों के अभाव होने पर भूतार्थवाद होता है। इस श्लोक का अभिप्राय यह है कि जिस अर्थवाद का दूसरे प्रमाण से विरोध होता है उसे गुणवाद कहते हैं। जैसे आदित्यो यूप प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा आदित्य एवं यूप के एक होने का वाद होता है, अतएव यहाँ लक्षणा के द्वारा यूप आदित्य के समान उज्ज्वल है। इस प्रकार उज्ज्वलत्व रूप गुण का प्रतिपादन किया जाता है। अनुवाद उस अर्थवाद को कहते हैं जिसके अर्थ का ज्ञान अन्य प्रमाण से ही हुआ रहता है, यथा अग्निर्हिमस्य भेषजम् कोष्ठक अग्नि सर्दी की दवा है कोष्ठक बंद। यह वाक्य यहाँ प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा पूर्व से ही यह सिद्ध हुआ रहता है कि अग्नि हिम का विरोधी है। भूतार्थवाद उस अर्थवाद को कहते हैं जिसका दूसरे प्रमाण से विरोध भी न हो रहा और जिसके द्वारा प्रतिपादित अर्थबोध अन्य प्रमाण से भी संभव न हो। जैसे इंद्रो वृत्राय वज्र मुदयच्छत, इंद्र ने वृत्त को मारने के लिए वज्र उठा लिया है। यह भूतार्थवाद का उदाहरण है। मीमांसार्थ संग्रह कौमुदी। स पुनर्थवादो गुणवादो अनुवादो भूतार्थवाद शेति त्रिधा भव तीति पुनरपितम त्रेधा विभजते पुनस्त्रेधेति तस्य त्रिविधत्वे वृद्ध सम्मति मुदाहरति तदुक्तमिति तद्धानादिति तयोर हानम तद्धानम तस्मादिति विग्रह प्रमाणांतर विरोध प्रमाणांतराव रावधारणयोर्हानादित्यर्थ समुदाहृत वृद्ध सम्मतिं व्याचष्टे अस्यार्थम् इत्यादिना इन्द्रो वृत्तायेति अस्य वृत्तं प्रतीन्द्र वज्रोद्यमनि भावा वगाहि प्रमाणान्तस्यादर्शनान्न तद्बोधने प्रमाणान्तरेण विरोध नापि प्रमाणान्तरागवतार्थ प्रतिपादकत्वं वृत्रं प्रतीन्द्र वज्रो यमन प्रतिपादक प्रमाणान्तरस्यादर्शनादिति भावः। अर्थबोधनी, पिछले विभाग में अर्थवाद का जो विभाजन हुआ था उसका आधार अर्थवाद का विधि एवं निषेध से संबंध ख्यापन था। जो अर्थवाद विधि विहित की प्रशंसा करता है उसे विधिशेष एवं जो निषेध निषिद्ध अर्थ की निंदा का ख्यापन करता है उसे निषेध शेष कहा जाता है। प्रकृति विभाग में अर्थवाद का जो विभाजन प्राप्त होता है उसका आधार यह है कि अर्थवाद के प्रतिपाद्य विषय के अन्य प्रमाणों से सिद्धि होती है या नहीं। इस विभाग में अर्थवाद के तीन प्रभेद किए गए हैं, गुणवाद, अनुवाद एवं भूतार्थवाद। जिस अर्थवाद के अभिधेय अर्थ का अन्य किसी प्रमाण से विरोध उत्पन्न हो रहा हो और इस प्रकार अर्थवाद के मुख्यार्थ के बाद हो जाने के कारण गुण रूप लाक्षणिक अर्थ लिया जा रहा हो उस अर्थवाद को गुणवाद कहा जाता है। इसलिए श्लोक में गुणवाद का लक्षण विरोध है गुणवाद स्यात् किया गया है। गुणवाद अर्थवाद का उदाहरण आदित्यो यूपः है। आदित्यो यूपः का वाच्यार्थ यह है कि यूप अर्थात यज्ञ स्तंभ आदित्य है, किन्तु सभी व्यक्ति जानते हैं कि यूप आदित्य नहीं हो सकता। इस प्रकार मुख्यार्थ का बाध हो जाने पर आदित्यो यूपः का अर्थ लक्षणा द्वारा यूप आदित्य के समान उज्ज्वल होता है। इस प्रकार लक्षणा द्वारा यहाँ उज्ज्वलत्व रूप गुण विवक्षित है। इस रूप में गुण का कथन होने के कारण प्रकृति अर्थवाद को गुणवाद कहा जाता है। उस अर्थवाद को अनुवाद कहा जाता है जिसका प्रतिपाद्य विषय अन्य प्रमाण से भी अवधारित अर्थात निश्चित रहता है। इसलिए ग्रंथकार ने अनुवाद का लक्षण करते हुए कहा है प्रमाणांतरा वगतार्थ बोध को अर्थवादो अनुवाद अर्थात अन्य प्रमाण या प्रमाणों से ज्ञात अर्थ का ज्ञान कराने वाले अर्थवाद को अनुवाद कहते हैं। ग्रंथकार ने यहाँ अनुवाद के उदाहरण के रूप में तात्रीय संहिता प्राप्त अग्निर्हेमस भेषजम वाक्य को उद्घृत किया गया है। अग्नि शैत्य की दवा है अर्थात शैत्य का विनाश करने के कारण अग्नि शैत्य का विरोधी है। यह बात प्रत्यक्ष प्रमाण से पहले ही ज्ञात हुई रहती है। उसी ज्ञात विषय का ज्ञापन कराने के कारण अग्निर्हेमस्य भेषजम वाक्य को अनुवाद कहा जाता है। अर्थवाद का तीसरा प्रभेद है भूतार्थवाद। भूतार्थवाद शब्द का अर्थ है यथा भूत वस्तु अर्थात यथार्थ का विधान कराने वाला वाक्य जिस अर्थवाद स्थल में न तो गुणवाद स्थल की भांति प्रमाणांतर विरोध होता है अर्थात जहाँ प्रमाणांतर विरोध एवं प्रमाणांतरा व धारण इन दोनों का अभाव होता है वहाँ भूतार्थवाद संज्ञक अर्थवाद माना जाता है। कोष्ठक प्रमाणांतर विरोध तत्प्राप्ति हितार्थ बोध को अर्थवादो भूतार्थवाद है। कोष्ठक बंद श्लोक में भूतार्थवाद का लक्षण तद्धानात् किया गया है। तद्धानात् का विग्रह तयोर्हानात् होगा और तयोह का अर्थ प्रमाणांतर विरोध प्रमाणांतरा वधरणयोह होता है। भूतार्थवाद अर्थवाद का उदाहरण है इंद्रो वृत्राय वज्र मुदयच्छत। इसका अर्थ यह है कि इंद्र ने वृत्त का वध करने के लिए वज्र को उठा लिया। इस स्थल में न तो कोई ऐसा प्रमाण ही प्राप्त होता है जो वृत्त का वध करने के लिए इंद्र के वज्र उठाने का विरोध कर सके और न ऐसा ही कोई प्रमाण प्राप्त होता है जिसे यह ज्ञात हो सके कि इंद्र ने वृत्र को मारने के लिए वज्र को उठाया। उक्त प्रकार से यहाँ प्रमाणांतर विरोध एवं प्रमाणांतरावधारण दोनों का अभाव होने के कारण इंद्र वृत्राय वज्र मुदयच्छत को भूतार्थवाद अर्थवाद का उदाहरण माना जाता है। इस प्रकार अर्थवाद विषय विचार समाप्त हुआ। छ उपसंहार प्रसंग धर्मभूत याग के प्रतिपादक वेद के पांचों प्रभेदों विधि मंत्र नामधेय निषेध एवं अर्थवाद का विवेचन पूर्ण होने के पश्चात अब ग्रंथकार ग्रंथ का उपसंहार करते हैं। उपसंहार एवं च यजेत स्वर्ग काम इत्यादि निखिल वेदस्य साक्षात परंपरया वा यागादि धर्म प्रतिपादकत्वं सिद्धम् सो अयम धर्मो यदुद्दिश्य विहितस्तुदेशेन क्रियमाणस्तद्धेतुः ईश्वरार्पण बुद्धया क्रियमाणस्तु निःश्रेयस् हेतुः न च तदर्पण बुद्ध्यानुष्ठाने प्रमाणाभावः यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् इति भगवद्गीता स्मृतेरेव प्रमाणत्वात् स्मृतिचरणे तत्प्रमाणस्य श्रुतिमूलकत्वेन व्यवस्थापनात् इति शिवम्। अर्थ इस प्रकार यह सिद्ध हो जाता है कि यजेत स्वर्ग काम इत्यादि समस्त वेद साक्षात अथवा परंपरिया याग आदि धर्म का प्रतिपादक है। याग रूप धर्म का विधान जिस उद्देश्य से किया जाता है यदि उसी उद्देश्य से उसका अनुष्ठान भी होता है तो उस अनुष्ठान से उद्दिष्ट फल की प्राप्ति होती है। यह भी नहीं कहा जा सकता कि ईश्वरार्पण बुद्धि से यागानुष्ठान के विधान होने में कोई प्रमाण नहीं है। कारण हे अर्जुन जो करते हो जो खाते हो जो हवन करते हो जो दान करते हो जो तप करते हो वह सब मुझे अर्पण कर दो। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता स्मृति ही इस विषय में प्रमाण है। जैमिनी ने प्रथम अध्याय के तृतीय पाद में सिद्ध किया है कि वेद मूलक होने के कारण स्मृति भी प्रमाण होती है। इति शिवम् मीमांसार्थ संग्रह कौमुदी एवम् उपपादितं विध्यर्थवादादि रूपस्य पंचविध वेदस्य साक्षात् परम्परया यागादि धर्म प्रतिपादकत्वे नार्थवत्त्वम् उपसंहरति एवं चेति उक्तेन प्रकारेण चेत्यर्थः सो अयम् यागादि रूपो धर्मो यत् स्वर्गादि फलमुद्दिश्य विहितः सो अयम् तादृश फलोद्देश्येनानुष्ठीयमान एव तस्य फलस्य हेतुर्भवति परमेश्वर समर्पण मनीषया अनुष्ठीय मानस्तु चित्त शुद्धि तत्व ज्ञान प्राप्ति द्वारा परंपरया मोक्ष हेतुरिति धर्मानुष्ठानस्य विवि दिशा श्रुति प्रामाण्यात् संयोग पृथकत्व न्यायमाश्रित्य परम पुरुषार्थ पर्यवसा इत्वमुपक्षीपति सो अयम् इत्यादि धर्मस्य परमेश्वर समर्पण बुद्धि अनुष्ठाने प्रमाणाभाव माशंक तत्र भगवद वाक्यम् प्रमाणयति न चेत्यादिना न च तस्याः स्मृतेर् प्रमाण्यमासंख्यम् तन्त्रे स्मृतिपादे स्थितम् अष्टकाः कर्तव्या इत्यादि स्मृतिवाक्यम् न धर्मे प्रमाणम् पौरुषेय वाक्यत्वे सति मूल प्रमाणरहितत्वाद् विप्रलम्भक वाक्यवत् अथ मूल प्रमाणवत्वात् वेदार्थ एव स्मृतिभिरुच्यत इति मन्येथाः तर्हि वेदेनैव तदर्थस्यावगत गतत्वादीयं स्मृति अनर्थ का स्यात् तदानीम् अनुवादकत्वाद् प्रमाण्यमिति प्राप्ते ब्रह्मः विमता स्मृतिर्वेदमूला वैदिकम् अनुवादि प्रणीत स्मृति तत्वात् उपनयनाध्ययनादि स्मृतिवत् न च वैयर्थम् शंकनीयम् अस्मदादीनाम् प्रत्यक्षेषु नानावेदेषु विप्रकीर्णस्यार्थस्यैकत्र संक्षिप्य प्रमाणत्वात् तस्माद्यं स्मृति धर्मे प्रमाणमिति अर्थ बोध निवेद के विधि मंत्र नामधेय निषेध एवं अर्थवाद इन पांचों प्रभेदों का संपूर्ण विवेचन पिछले विभागों में किया जा चुका है। इस विभाग में ग्रंथकार ने ग्रंथ का उपसंहार किया है। ग्रंथकार ने उपसंहार में प्राय उसी शब्दावली का प्रयोग किया जिसका आप देव में ने मीमांसा न्याय प्रकाश में आप देव के शब्द ये है सो अयम् धर्मो यदुद्देशेन विहितः तदुद्देशेन क्रियमाणस्तद्धेतु श्रीगोविन्दार्पण बुद्ध्या क्रियमाणस्तु निःश्रेयस् हेतुः न च तदर्पण बुद्ध्या तदनुष्ठाने प्रमाणाभावः यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तत्पश्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम् इति स्मृतेः। यजेत स्वर्ग काम आदि विधियां मंत्र नामधेय निषेध एवं अर्थवाद ये सभी वेद भाग साक्षात अथवा परंपरिया याग रूप धर्म का ही प्रतिपादन करते हैं। सभी धर्म परक हैं। ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग काम यजेत यह विधि स्वर्ग को उद्देश्य करके ज्योतिष्टोम याग रूप धर्म का विधान करती है। अतएव यदि ज्योतिष्टोम का अनुष्ठान स्वर्ग के उद्देश्य से किया जाता है तो स्वर्ग की प्राप्ति होती है। यह मीमांसा का परंपरागत सर्वविध सिद्धांत है। इसी प्रकार अन्य यागों के अनुष्ठान के विषय में भी समझना चाहिए किंतु यदि किसी याग का अनुष्ठान ईश्वरार्पण बुद्धि से किया जाता है तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। कोई व्यक्ति यह प्रश्न कर सकता है कि ईश्वरार्पण बुद्धि से याग अनुष्ठान करने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है, इस विषय में क्या प्रमाण है? इस स्थल पर प्रमाण रूप में गीता का यत् करोषि यदश्नासि इत्यादि श्लोक प्रस्तुत किया गया है। फिर प्रश्न यह किया जा सकता है कि श्रीमद् भागवत गीता तो स्मृति है किंतु श्रौत यागों में श्रुति वाक्य होते हैं, स्मृति वाक्य नहीं, फिर स्मृति को यहाँ क्यों प्रमाण माना गया है? ग्रंथकार का उत्तर यह है कि स्मृति को श्रुति मूलक होने के कारण प्रमाण माना गया है। जैमिनी ने प्रथम अध्याय के तृतीय पाद में श्रुति मूलक होने के कारण स्मृति को प्रामाणिक सिद्ध किया है। स्पष्ट है कि मीमांसा दर्शन न तो ईश्वर की सत्ता में विश्वास करता है रहा है और न ही निष्काम कर्म एवं मोक्ष में। निष्काम कर्म एवं मोक्ष आदि की धारणाएं अपेक्षाकृत परवर्ती हैं। इस प्रकार निरीश्वर में मांसा दर्शन भी परवर्ती विचारों से प्रभावित होकर सेश्वर हो गया। मंगलाचरण एवं उपसंहार के अतिरिक्त ग्रंथ का कोई भी विवेचन सेश्वरता से प्रभावित नहीं है। इस प्रकार ग्रंथ का विवेचन परंपरागत मीमांसा के सिद्धांतों पर आधारित शुद्ध विवेचन है तथा मंगलाचरण एवं उपसंहार में सेश्वरता का पुट चढ़ा दिया गया है। इति शब्द ग्रंथ की समाप्ति का सूचक है और शिवम शब्द ग्रंथ के रचयिता पाठक आदि सबके लिए मंगल कामना व्यक्त करता है। प्रसंग अंत में ग्रंथकार ग्रंथ के निर्माण का प्रयोजन बतलाते हैं। अर्थ संग्रह रचना प्रयोजनम बालानाम सुबोधाय भाष्करेण सुमेधसा रचितो अयम समासेन जैमिनी अर्थ संग्रह इति श्री महामहोपाध्याय लोगाक्षी भास्कर विरचित पूर्व मीमांसार्थ संग्रह नामकम प्रकरणम समाप्तिम गात। अर्थ अत्यंत मेधावी लोगाक्षी भास्कर ने जैमिनी दर्शन को अर्थ संग्रह नामक ग्रंथ की रचना इसलिए की कि बालकों को भी सरलता से कर्म मीमांसा दर्शन का ज्ञान हो सके। मीमांसार्थ संग्रह कौमुदी ननु किमनेन संग्रह निरूपणेन विस्तृत भाष्या दिग्रंथैरेव जैमिनी न्यायार्थ बोध संभवादित्याशंकय संग्रह निरूपणे स्वप्रवृत्ति निमित्तं प्रदर्शयति बालानामति तेषां विस्तृतत्वेन दुख ग्राह्यत्वान तैर्बाला शब्दित पूर्व मीमांसा संस्कार शून्यानां जैमिनीय न्यायार्थ बोध संभवति अनेन तु तत् द्विस्तृत शास्त्र प्रवेश द्वारा संभवत्ये स इति भावः। टीका विहीने तु कृता ही टीका पूर्वे तु तंत्रे खलु संग्रहे अस्मिन् दुर्बोध शास्त्रे किमु मादृशानां दृष्ट्वापि दोषं न सहन्ति धीराः यदाज्ञया बंध विमोक्षणं विना स्वधर्म सेवा फल हेतुतां गता प्रणौमि सोमं मृडमादिकारणं किमन्य देवै जनफल्गु हेतुभि मदीय यत्नः शिव पाद सेवया गुरौ कटाक्षै कलवेन लब्धया प्रयुज्यमानः शिव पाद पंकजे स्वयं तु भूयान् मृड तोष कारणम् सुजन पदविनियुतो दुर्जनाद दुर्निष्ठो गुरुत गुरुतर शिव भक्तस्तेन लब्धागमेक्ष श्रुतिमणि पदनिष्ठो भिक्षु रामेश्वराख्य सुजनयन निवेशाय प्रबंधम चकार गुणगण मणि सिंधु शंभु पादैक भक्तो निगम शिरसि निष्ठो जात वैराग्य चित्तः श्रुति नलिन विकासे भानुभावो यह ईशस्तमीह महिम पूज्यम नौमि गोपम यतीन्द्रम तस्मादेव गुरुवरादभीष्ट लब्धम गोपाला शम पदगीय मान दैवात येना येनो माधव चरण चरणाब्ज सेविना त्रतम वंदे महिम गुरुम विशाल बुद्धिम या काशी निखिल गुरुर महेश्वरस्य प्राणांते सकल शिव प्रदा प्रसिद्धा यत्राहम सकल सुरेश लब्ध तत्व तत्रेयम सुजन हित प्रदा निबद्धा इति सिद्धम। अर्थ बोधिनी लवाक्षी भास्कर के समय में कर्म मीमांसा दर्शन राशनमुख हो चला था। कर्म मीमांसा के बृहत्काय ग्रंथों का अध्ययन एवं अध्यापन सामान्य रूप से कठिन हो रहा था, अतएव आवश्यकता इस बात की थी कि कर्म मीमांसा दर्शन का एक लघुकाय ग्रंथ होता है जिसमें कर्म मीमांसा के पदार्थों का संक्षिप्त एवं सरल विवेचन होता और जिसको छात्र सरलता से समझ सकते। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए लोगाक्षी भास्कर ने अर्थ संग्रह नामक ग्रंथ की रचना की। इस प्रकार महामहोपाध्याय लोगाक्षी भास्कर के द्वारा रचित पूर्व मीमांसा दर्शन का अर्थ संग्रह नामक प्रकरण ग्रंथ समाप्त हुआ। इति सिद्धम।